हुई है, सफर है, मगर कामयाबियों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कि हमारे हकूक हैं, हमें पूरी तरह हकूक नहीं दिए जा रहे, इस बात का ही मनवाना एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम 8 मार्च को और इस तरह के दीगर दिन जो हैं उनको हम बात करते रहते हैं, दूसरे इश्यूज पर भी बोलते रहते हैं। कुछ लेजिस्लेटिव हमारी कामयाबियां हैं, हमने जब अयूब खान ने एक फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस किया था पास, उसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद 7-8 लॉज जो हैं वो हमने पास करवाए।
अच्छा।
शोबों को अगर देख लें महजत कि कितने शोबों में खवातीन है, वो भी हमारी एक कामयाबी है ना।
अच्छा,
गिनवाती जाओ।
बिल्कुल, थोड़ा सा बात तो जरूर कीजिए। यही मैंने कहा था ना कि हम कम से कम ऐसा करें, खुश तो हो जाए ना कम से कम, कि हम कट चल किस तरफ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। चलिए पहले हम
इतने शोबों में खवातीन आ गई, मीडिया में जहाँ इतना स्टिग्मा लगाया जाता था, अब इतनी खवातीन आ गई है, एयरपोर्ट में आ गई है, ये बिजनेस इतने शुरू कर लिए हैं, ये चीजें देखते बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आप लोग कहते हैं माइंड सेट चेंज, माइंड सेट खुद ब खुद चेंज होता है। जब आप दुकान पर जाए और एक आगे सेल्स देखो तो माइंड सेट खुद ब खुद चेंज होता है।
अच्छा ठीक है, हम काफी सारी बात करेंगे इसी बारे में, जोया से बात करते हैं। जोया, ये बताइएगा कि खवातीन को एम्पावर करने के लिए उठाए जाने वाले कुछ आम इकदामात डॉक्टर फौजिया बता रही हैं, कुछ आप भी बात कीजिए, क्योंकि आज मैंने ये तय कर रखा है कि हमने इसमें मनफी बात तो कोई करनी नहीं, आज हमारा दिन है और इसको पूरे जोक और शौक से हम मनाने की कोशिश करते हैं।
बहुत शुक्रिया बहजत आपके इस पैगाम का कि हमने कोई मनफी बात नहीं करनी। आई डोंट वांट टू बी अ शो स्पॉइलर, मगर मैं चाहूंगी हमें कहीं ना कहीं मनफी बात
वो आ जाएगी, वो आ जाएगी। वो मैं तो पहले कहा ना कि हमें तो बात भी वहीं से की ना, तो बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं कि उनके नाम पर कितने बड़े दिन का आगाज होता है, कितने बड़े दिन के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है, तो वो तो हम कर चुके बात।
हकीकत
जी बिल्कुल,
हकीकत से हमें इनकार नहीं है कि पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है उन ममालिक में जो कि खवातीन के लिए सबसे गैर महफूज समझे जाते हैं। आज ये आज की रिपोर्ट है, यानी कि पाकिस्तान सबसे गैर महफूज मुल्क है, तीसरे नंबर पर वो आ रहा है। सो इस सूरत हाल को गंभीर जानते हुए हमें चाहिए पहले तो मिसाल मसाइल जो भी हैं हमारे पास उनकी निशानदेही करें। जो अच्छी बात हुई है, जी कवानीन बन गए हैं, इस पे बात होनी शुरू हो गई है, मगर क्या ये तमाम सेमिनार और तकारीर और कवानीन एक आम औरत की जिंदगी में कोई बदलाव ला रहे हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। आज भी पाकिस्तान में कम उम्र की शादी, यानी कि जिस लड़की की शादी 18 पहले हो जाती है, 18 साल की उम्र पहले हो जाती है, उसके वालदैन को खुश नसीब समझा जाता है कि आप बहुत जल्दी कामयाबी के साथ अपनी जिम्मेदारी से फारग हो गए हैं। और ये मैं बड़े शहरों की बात कर रही हूँ, छोटे शहरों में क्या हालात हैं ये हम नहीं जानते। और जहाँ पर रिपोर्ट हो जाती है, मीडिया पहुंच जाता है, वहां पर खबर चलने से शायद इस चीज को रोका जा सकता है। दूसरी बात हम करते हैं रेडियो टीवी अखबारात के हवाले से, जहाँ पे खवातीन के मुतालिक जो खबरें हैं, क्या उनकी जबान बदल गई है, क्या रिपोर्टिंग का तरीका बदल गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें इस पे काम करना है, हमें इस पे आवाज उठानी है, क्योंकि अब हम आवाज उठा सकते हैं, अब हमें लगता है कि हुकूमत हमारे साथ है। एक जमाना था कि सिविल सोसाइटी बिल्कुल खामोश करा दी जाती थी मजहब के नाम पे, अपनी इकदार के नाम पे, अब ऐसा नहीं है। हमें ये एहसास है कि इस्लाम ने जो हमें हकूक दिए हैं उन पे हम बात कर सकते हैं, उन्हें हम मांग सकते हैं,
मांग सकते हैं। अच्छा,
हम मीडिया पे आवाज
उठा सकते हैं और अपने मसाइल की निशानदेही भी की जा सकती है। जाहिर है कि जैसा कि डॉक्टर फौजिया ने भी कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी, तो इसी को कहेंगे कि अब कम से कम हमें इस बात का बहुत हद तक शऊर है, कम से कम सिविल सोसाइटी की हद तक उन खवातीन को, जो कि बाकी उन खवातीन के लिए भी आवाज़ उठा सकती हैं जिनमें ये शऊर नहीं है, जिनमें ये आगही नहीं है, और एक आवाज़ उठती है तो जाहिर है कि उसके साथ बहुत सारी आवाज़ें मिलती जाती हैं। डॉक्टर फौजिया, ये बताइए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ अभी बुनियादी हकूक या बुनियादी जरूरियात के हसूल के लिए लोगों को बहुत कोशिश करना पड़ती है, आपने अकलियतों के लिए, नौजवानों के लिए बहुत काम किया है, तो वहां खवातीन को उनका मकाम दिलाने के लिए भी बड़ी जान फिशानी से काम किया। अभी हम बात करेंगे जो एक आध कवानीन के बारे में भी कुछ बात करेंगे आगे चल के। आपके ख्याल में इस शोबे में जो की जाने वाली पेशरफ्त है, इसकी डायरेक्शन जो है, क्या ये समत दुरुस्त है?
मैं समझती हूँ, बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं समझती हूँ कि नियत भी है। बात यह है कि सारे सेक्शन जो है ना सोसाइटी के, उनको साफ करना पड़ता है। ऐसे बैजेट कहने को बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन जब होने लगता है तो वो सबसे बड़ी रास्ते की दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। अभी जैसे ये हिंदू मैरिज बिल है,
جی
میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی فتح ہوگی ہماری ریلیجیس مائنورٹی کمیونٹیز سے. کرسچن میرج اور ڈیورس ایکٹ ہے, اس میں بھی ترمیموں کی ضرورت ہے. ہندو تو میرج رجسٹریشن تھی ہی نہیں, ڈیورس اور میرج کا کوئی کانسیپٹ یہاں بنائے نہیں, جو کہ بہت زیادتی کی بات ہے. ایک شہری ہونے کے ناطے تو ایک سول آپشن دینا چاہیے تھا. اس کو کب سے قانون بننے کی ضرورت ہے اور لوگ محنت کر رہے ہیں, کچھ تو بہت ہی چیمپئن ہیں ہمارے پارلیمنٹیرین جو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ سوچو کہ اس کو کوئی کیوں پاس نہیں کرے گا, عجیب سی بات ہے نا بھائی. ہندو کمیونٹی ہے, وہ بھی پیار ہے, وہ اپنی شادی رجسٹر کرائے, وہ اپنی ڈیورس رجسٹر کرائے, اس میں کون سی قیامت آ جائے گی. لیکن ایک عجیب قسم کا اندر سے ریزسٹنس ہوتا ہے, اور یہ پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے جو سب سے زیادہ ریزسٹ کرتی ہے, کسی بھی چیز کو ریزسٹ کرتی ہے. تو اس نے اب آپ دیکھو سندھ نے پاس کیا ہے, فیڈرل میں ابھی یہ اگلے ویک میں آنے والا ہے. میں سمجھتی ہوں بہت بڑی ون ہوگی کہ ایک سٹیزن کے طور پہ, ایک شہری کے طور پہ کسی نان مسلم کو ایکسیپٹ کیا جائے. یہاں بیسک سوال تو یہی آ جاتا ہے. تو اس میں بھی مطلب آپ جیسے جیت کی بات کر رہے ہو, تو ہاں جیت کی یہ بات ضرور ہے کہ آپ اس کمیونٹی کی خواتین بھی آرگنائز ہو کر اپنے حق کی بات کر رہی ہیں. پہلے بھی ساتھ ملتی تھیں جو جوائنٹ ہمارے ایجنڈا سے, مگر اچھا لگ رہا ہے. ابھی اگر یہ لا پاس ہو جائے گا تو بہت بڑا تحفہ ہوگا. میں سمجھتی ہوں باقی صوبوں کو فوراً پاس کرنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی, میں تو اس لیے ہنس رہی ہوں کیونکہ یا تو ہونا کہ پتہ نہیں کون سے خزانے مانگے ہو حکومت کی طرف سے. میں یہ کہوں گی تمام حکومتیں, پچھلی بھی یہ ابھی بھی جو ہے, بہتری کی کوشش ضرور کرتے ہیں بہجت. یہ آپ کو میں نے اس پہ لکھا بھی ہے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے نا, وہ عام طور پہ شہری کا کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مارتے ہیں گھروں میں, وہ خاون بیویوں کو مار رہے ہیں یا ماؤں کو مار رہے ہیں. سو ایسا نہیں کہ حکومت آ کے مار رہی ہے کسی کو. ہاں اکاؤنٹیبلٹی کی بات ان پہ ضرور آتی ہے. تو میں صرف یہ کلیئرٹی دینا چاہ رہی ہوں کہ حکومت خود وائلیٹ نہیں کر رہی ہوتی ہیومن رائٹس. یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں جو وائلیٹر ہے اس کو پکڑو. جب اس کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کی عوام پھر راستے میں آ جاتی ہے. اب میں آپ کو مثال دوں, اب یہ جنسی ہراسیت کا قانون, اس کو بھی آج ہم سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. بہت بریک تھرو ہوا پچھلے 5 سال میں, میں سمجھتی ہوں بہت اچھی طرح امپلیمنٹ ہوا. آج ورکنگ وومن اگر یہ سمجھے کہ اس کو زیادتی کی کہ ٹرمنیٹ کر دیا, وہ آواز اٹھاتی ہے, وہ کیس لے کے جاتی ہے, کبھی امبڈسمن کے پاس جاتی ہے, کبھی کورٹ میں جاتی ہے. یہ تو ہے ہماری, مگر آپ کو بتاؤں کہ جو ریزسٹ کر رہی ہے وہ گورنمنٹ نہیں ریزسٹ. ریزسٹ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو داڑھ کے نیچے آتے ہیں, یا ایسی مینجمنٹ ہے جن کا دل کرتا ہے کہ وہ عورت کو ابیوز کریں, انگوٹھے کے نیچے رکھیں, وہ ریزسٹ کرتے ہیں. پھر وہ شور مچاتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں اچھا جی اس میں ترمیم لاؤ, اس کے دانت نکالو, یعنی تاکہ ہمارے دوست جو ہے نا اس کے نیچے نہ آئے. تو وہ آپ کو میں بتاؤں 6-7 ترمیمیں تو ہم خود ایک طرح کی
بالکل اس قانون کی مجھے بات کرنا تھی, کیونکہ یہ آپ کا بہت بیسک, آپ کا بڑا اچیومنٹ تھا جو گزشتہ دنوں میں بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آیا. ہم اس کے بارے میں بات بھی کرتے آئے. جی
اس کی وارننگ بھی میں ذرا سا آپ ہی کے پروگرام کے ناطے دوں. ابھی سندھ میں پھر ایک امینڈمنٹ آئی بیٹھی ہے. مطلب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بھائی امینڈ کرنے کے لیے باقی قوانین نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں, جو ایک امپلیمنٹ ہونے لگا ہے اسی کے پیچھے سارے پڑ گئے ہیں کہ اس کو کسی طرح ہم ہلکا کریں.
اچھا
یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ہم ہماری سیلیبریشن سے پھیکا نہیں پڑنا چاہیے.
ٹھیک, صحیح بات. اب ہم زویا سے ایک بات کرتے ہیں. ابھی جیسے کہ ڈاکٹر فوزیہ ابھی بات کر رہی ہیں, زویا خواتین کے حق کے لیے, حیثیت کے لیے, مقام کے لیے تنظیمیں کام کرتی ہیں, انفرادی سطح پر کام کیا جاتا ہے. اور جب یہ ہم سارا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے ڈاکٹر فوزیہ کو بھی سنا, بہت کچھ یہ اس کے بارے میں لکھتی ہیں, بہت کچھ اس بارے میں کام کرتی ہیں عملی سطح پر بھی, لیکن ایک مخصوص مائنڈ سیٹ سامنے آتا ہے. اگرچہ اس کے بارے میں بھی ظاہر کوشش کی جاتی ہے کہ جب آپ باہر نکلتے ہیں کام کرتے ہیں تو اس مائنڈ سیٹ کو کسی نہ کسی حد تک اس میں بھی تبدیلی کا امکان ہوتا ہے. آپ نے ابھی تک جن شعبوں میں خواتین کے لیے کوششیں کی ہیں اس میں آپ کو کس طرح کے مائنڈ سیٹ کا سامنا کرنا پڑا؟ جیسا کہ ڈاکٹر فوزیہ نے بتایا ابھی کہ مڈل کلاس کا جو ہمارا طبقہ ہے وہ خود راہ میں آ جاتا ہے. احتساب کرنے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں حکومت کو زیادہ کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. کن مقامات پر زیادہ مشکلات ہیں؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کے ذرا جو پیغام دے رہے ہیں, جو بھی میڈیا ہمارا آج کل ٹی وی ڈراموں کے ذریعے, اشتہارات کے ذریعے پیغام دے رہا ہے, وہ بنیادی طور پہ غلط ہے, کیونکہ وہ اثر انداز ہو رہا ہے لوگوں کی ذہنیت سے, خاص طور سے مڈل کلاس اس اثر کو بہت تیزی سے قبول کر رہی ہے کہ کیا ایک کام کرنے والی عورت ایک غلط عورت ہے, وہ گھر کو نظر انداز کرتی ہے, اپنے بچوں کو نظر انداز کرتی ہے. یہ میسج ہمیں ٹی وی ڈراموں کے ذریعے مل رہا ہے اور اس کو بدلنے کی بے تحاشا ضرورت ہے. روزگار کے مواقع فراہم کرنا بالکل ضروری ہے, مگر پہلے آپ جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے وہ تو پیدا کیجیے. ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے, میں نے تو یہ دیکھا ہے, وہ گھر سے بے شک کسی کے گھر میں صفائی کرنے جا رہی ہے, یا وہ کوئی مینیجر ہے یا وہ کوئی سی او ہے, سڑکوں پہ اس کو ہراساں کیا جاتا ہے, چاہے وہ گاڑی میں جا رہی ہے, وہ رکشے پہ جا رہی ہے, وہ پیدل جا رہی ہے سڑکوں کے اوپر, اور اس پہ کوئی ہمارا رد عمل نہیں آتا. اگر ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کوئی عورت کو چھیڑ رہا ہے تو ہم دوسری طرف منہ کر کے نکل جاتے ہیں. کیا اس عورت کو معلوم ہے اپنے حقوق کا؟ کیا اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس کوئی ہیلپ لائن ہے یا میں اس جگہ جا سکتی ہوں, میں ان لوگوں سے بات کر سکتی ہوں کہ یہ شخص مجھے؟
تو سویا, آپ لوگ جو کام کرتے ہیں, جو میں نے کہا, سوری بات آپ کی کٹتی ہے, کہ انفرادی سطح پر جب ہم بات کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ظاہر ہے کہ ایک آواز کے ساتھ دوسری آواز ملتی ہے, ساتھ کھڑے ہوتے چلے جاتے ہیں. جب آپ لوگ یہ سارا کام کرتے ہیں تو آپ اس سے کیوں نہیں شروع کرتے کہ ایک عام عورت جو کہ جیسا کہ ڈاکٹر فوزیہ سعید کے کام کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ گراس روٹ لیول پہ جا کے ان عورتوں کے بیچ میں جا کر کام کرتے ہیں یہ لوگ, جبکہ انفرادی سطح پر یا اپنی تنظیموں کی طرف سے کام کرتے ہیں, تو ان کو آگاہی دینے کے لیے اب تک کتنا کام کیا گیا ہے؟ کیا سمجھتی ہیں آپ؟
میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے سارے ساؤتھ ایشیا کا نہ صرف کے بہت مشاہدہ کیا ہے, بلکہ ہمارا تقریباً ہر مہینے بھارت اور ساؤتھ ایشیا کے ممالک میں جانا بھی ہوتا ہے اپنی این جی او کی وجہ سے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں اس پہ بہت کام ہونے والا ہے, کیونکہ جب تک ہم گراس روٹ لیول کو چھوڑ کے اور اپر کلاس کو چھوڑ کے مڈل کلاس کی طرف نہیں آئیں گے, تب تک کوئی بدلاؤ معاشرے میں مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. ہماری لوور مڈل کلاس, مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس, وہاں پہ عورتوں کے حقوق سب سے زیادہ متاثر ہیں.
اوکے,
اب صورتحال وہاں پہ خراب ہوتی جا رہی ہے, کبھی مذہب کے نام سے, کبھی ہماری معاشی اقدار کے نام سے. اچھا, ہمیں کام کرنا ہے, مڈل کلاس پہ کام کرنا ہے,
مڈل کلاس پہ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر فوزیہ اور زویا, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, جیسا کہ ہم نے بتایا کہ کچھ ہمارے تکنیکی ہمارے کچھ مسائل ہیں, اس کی وجہ سے ہم کچھ چیزیں آپ کو نہیں دکھا پا رہے. تو افغانستان کے شمالی شہر کندول سے تعلق رکھنے والی زرغونہ حسن کا ہم ضرور ذکر کرنا چاہیں گے, جو ایک باہمت خاتون ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جب کندوز پر طالبان نے حملہ کر کے کچھ دنوں کے لیے شہر پر قبضہ کر لیا تھا, تو اس سے واپس لینے کے لیے قبضہ فوجی کاروائیوں کا یہ شہر مرکز بنا رہا. ان دنوں میں یہاں پہ زرغونہ حسن جو ہیں وہ خواتین کے لیے ایک ریڈیو اسٹیشن چلاتی ہیں, جس میں خواتین کی آگہی کے لیے, ان کی صحت کے بارے میں, مختلف ان کے مسائل کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اب یہ آج کی خبر یہ ایک بڑی ہے کہ یہ ریڈیو اسٹیشن دوبارہ کھل گیا ہے, اور حالانکہ زرغونہ کہتی ہیں کہ طالبان کے حملے کے بعد شہر میں خواتین کے لیے بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے, اس لیے کہ طالبان خاص طور پر ان لوگوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے جو کہ روزگار سے کسی نہ کسی سے وابستہ تھیں. ہمارے پاس اس کے بارے میں بھی ایک رپورٹ تھی, لیکن ہمیں افسوس ہے کہ ہم یہ رپورٹ آپ کو اس وقت آج سنوا نہیں سکتے, اور بڑے ہی خاص دن پہ یہ ہمارا تکنیکی ایک پرابلم ہوا ہے. ڈاکٹر فوزیہ, آپ کا تعلق حکومت سے بھی ہے, کیونکہ ایک بڑے قومی ادارے نیشنل انسٹیٹیوٹ فار فوک ہیریٹیج کی آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں. آپ کے خیال میں خواتین کے لیے حکومتی سطح پر جو کیے جانے والے اقدام ہیں کتنے مضبوط اور مثبت ہیں؟ اس کے بعد ہم زویا سے یہ بھی بات کریں گے کہ ابھی خواتین کا جو پروٹیکشن بل بنا ہے اس کے بارے میں جو اتنے تحفظات ہیں وہ کیوں ہیں, لیکن پہلے ڈاکٹر فوزیہ کچھ بات آپ کیجیے.
جی, میں سمجھتی ہوں انٹینشن ہے بہت زیادہ, اور مختلف پیکیجز اناؤنس ہوتے رہے. اس میں پنجاب گورنمنٹ ذرا اچھی تیز رہی ہے, کافی مثبت پیکیجز انہوں نے اناؤنس کیے ہیں, اور ہر 8 مارچ کے ارد گرد تو ضروری کوئی اچھی خبریں آتی ہیں. سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے بہت بریک تھروز کیے ہیں, اس نے 2-3 لاز تو ایسے پاس کیے ہیں کہ جس کا بہت دیر سے انتظار تھا. پہلے انہوں نے لازمی ایجوکیشن 10ویں تک کا کیا ہے, جو لڑکیوں کے اوپر بھی بہت اثر انداز ہوگا. پھر کم عمری کی شادی کے اوپر 18 سال, انہوں نے پورے پاکستان میں بھی یہی صوبہ جس نے 18 سال عمر کا تعین کیا ہے, جو کہ بہت بہادر لا تھا. پھر ڈومیسٹک وائلنس کا پراپر لا انہوں نے بنایا, جس میں کرمینلائز بھی کیا ہے, جس میں بہت صاف ستھرا ہے قانون. وہ بلوچستان میں ایک ڈومیسٹک وائلنس سے لے کر آئے لا, لیکن وہ کچا اٹیمپٹ ہے. یہ جو پنجاب میں آیا, اس سے آگے آپ ان سے بھی بات کریں گی, لیکن یہ اس میں بھی ابھی کرمینلائز نہیں کیا گیا ڈومیسٹک وائلنس کو, لیکن بہت بہادر اٹیمپٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا شرمناک میڈیا کا اور مڈل کلاس ایجوکیٹڈ پروگریسو ساؤنڈنگ میڈیا کا جو بیہیویئر تھا,
وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنا شرمناک تھا. خاص طور پہ ہمارے شو ہوسٹ جو ہر ایک کا گریبان پکڑتے ہیں اور وہ ہر ایک سے پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا کیا. میں سمجھتی ہوں جتنا نقصان انہوں نے ان دو دنوں میں کیا جب یہ لا پاس ہوا ہے اور جتنے پروسیس کو وہ پیچھے لے کر گئے یا لے جانے کی کوشش کی وہ بہت شرمناک ہے. تو یہاں میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں حکومت کی طرف سے انٹینشن ہے اور آپ کو وقت وقت سے کانکریٹ چیزیں بھی مل رہی ہیں. اور میں یہ بھی کہوں کہ پارلیمنٹرین وومن پارلیمنٹرین خاص طور پہ کی جو حکومت میں ہیں سینٹ میں بھی نیشنل اسمبلی میں بھی مجھے بہت پازیٹیو وائب ملتی ہے. جینوئن خواتین ہیں, جینوئن طریقے سے وہ چینج لانا چاہتی ہیں. اب یہ جو ابھی پاس ہوا یہ وائلنس اگینسٹ وومن کا ایکٹ, اس پہ 2 سال سے کوشش ہو رہی ہے اور تمام پارٹی کی خواتین جو ہیں پنجاب اسمبلی کی وہ بہت محنت کر رہی ہیں, پلس پولیس کے کچھ لوگ جو بیوروکریسی کے لوگ اس پہ بہت ہوم ورک ہوا ہے.
اچھا زویا آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے خواتین کے تحفظ کے بل کی, اس دن آپ سے بات بھی میری ہو رہی تھی اس سلسلے میں جب ہم بات کر رہے تھے, تو آپ اس بارے میں بھی کچھ بات کرنا چاہتی تھیں. آج دن بھی ہے, موقع بھی ہے, ضرور بات کیجئے تاکہ اس کے بعد ہم آپ دونوں سے ایک ایک پیغام لے کر تو آج کی اس سیگمنٹ کو اپنی کو ختم کریں, کیونکہ اس پہ پروگرام تو ہمارے آج سارا دن چلیں گے. جی زویا.
جی بہت شکریہ. سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس قانون کے متعلق یہ واضح پیغام دیا جائے کہ یہ مردوں کے خلاف نہیں ہے, تاکہ ریزسٹنس آنی بند ہو جائے گی وہاں سے, جو کہ مردوں کے اندر ایک عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں مرد سے. یہ تو ہمارے خلاف سے سازش ہو گئی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ پیغام دیا جائے کہ یہ عورتوں کی بہتری کے لیے بھی ہے مگر یہ مردوں کے خلاف نہیں ہے. میرے اپنے تحفظات ہیں اس بل کے حوالے سے جن کا میں مختصرا ذکر کرنا چاہوں گی.
جی.
میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم ڈومیسٹک وائلنس کے بل کو دیکھتے ہیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ ایک عورت پہ اگر اس کا شوہر یا بھائی ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ فوری طور پہ اتھارٹیز کو بلا سکتی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ بے شک یو ایس اور کینیڈا میں ایسا ہوتا ہوگا اور شاید یہ وہاں امپلیمنٹ ہو چکا ہے اور بہت اچھی طرح سے چل رہا ہے, یہ ایک مسلمان ملک ہے, کوئی پاکستانی شوہر ایسا نہیں ہوگا جو کہ اپنی بیوی کو اس رپورٹ کے بعد بھی رکھنا چاہے گا. اس کی کوشش ہوگی کہ وہ گھر سے نکلنے سے پہلے اس کو 3 لفظ کہہ دے گا جبکہ اتھارٹیز اس کو 1 دن یا 2 دن کے لیے لے جا رہی ہیں.
ایسے تحفظات کا اظہار تو ظاہر ہے کہ بہت سارے علماء اور دانشوروں کی طرف سے ایسے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں ہم ڈاکٹر فوزیہ سے کوئک کامنٹ لیتے ہیں. مجھے معاف کیجیے گا زویا, ہمارے پاس اب وقت ذرا کم ہے اس سیگمنٹ کے لیے. تو فوزیہ, آپ نے بھی یہ سارے علماء کے تحفظات بھی سنے اور خاص طور پر جو دینی شخصیات ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی, اور خاص طور پر جیسا کہ زویا نے بھی کہا کہ عدم تحفظ کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایک جو بڑے انا کے معاملے ہوتے ہیں خاص طور پر مردوں کے معاملے میں اور خاص طور پر اس خاص ریلیشن شپ میں تعلق کے حوالے سے جو ایک انا کا مسئلہ بن جاتا ہے اس میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایسے معاشروں میں جہاں پر ابھی آپ کی ایمانسیپیشن آپ کہہ لیجئے یا تعلیمی سطح بہت بلند نہیں ہے یا ذہنی سطح, وہاں پر انا کے مسائل کافی زیادہ سامنے آ سکتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کچھ کام کیا جا رہا ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت اس بارے میں بھی کچھ غور کرے گی؟
دیکھیے بات یہ, اگر اس سے 2 سال سے کام ہو رہا تھا نا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ بل کو پاس کر کے اناؤنس کرنے سے پہلے تھوڑا سا گراؤنڈ آپ ہموار کر دیں. اگر پہلے سے اس کے پروسیس کی خبریں آنی شروع ہو جائیں دونوں طرح, شاید وہ سوچتے ہوں گے کہ ریئیکشن پہلے شروع ہو گیا تو ہم پاس نہیں کر پائیں گے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ذہن میں ہوگا, لیکن آپ کو میں کہوں کہ جو علماء ہیں نا خاص طور پہ پولیٹیکل پارٹیز کے, اب ہمارے یہاں 2 طرح کے ہیں. ایک ہے ٹی وی کے علماء جن کو ٹی وی پہ آنا ہوتا ہے اور وہ ان کی ایک طرح سے کیا کہنے, اب میں کوئی ذرا مناسب لفظ بولنا چاہ رہی ہوں کہ وہ ان کا پوتے ان کا ایریا پہ بنتا ہے کہ بھائی وہ اس چیز کی مخالفت کرے, خاص طور پر پولیٹیکل علماء چلے میں کہہ دیتی ہوں. وہ انہوں نے تو ہمیشہ ہی عورت کی مخالفت کی, جب بھی عورت کی کوئی ہمدردی کیا حقوق کیا انہوں نے عورت کے خلاف بولنا اپنا فرض سمجھا ہوا ہے. اس کی میں بات اس لیے نہیں کرتی کیونکہ بہت دفعہ بولتے ہیں جو چیز پاس ہونی ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے, جو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. پرابلم تب ہوتا ہے کہ جب ہمارا پڑھا لکھا ماچو طبقہ, جو میں کہوں کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیا, جو ویسے باتیں بہت پروگریسو کرتا ہے لیکن اندر
جو جی ڈاکٹر فوزیہ سعید کی کتاب بھی میرے سامنے ساری کتاب آ گئی آپ کی, ہاں بالکل بھیڑیے کی کھال میں
ہے نا
جی. सही, जिनसी हरासियत की कहानी
ज़ाहिर है सबका साथ मिलता है ना, फिर वो गड़बड़ करता है। इस बिल के पास होते ही वो जो तबका है, खासतौर पे जो मीडिया पे पोस्ट भी करता है अपने प्रोग्राम या अपने कमेंट्स देता है, जब उनके दिल को हाथ पड़ा ना, अरे हम अपनी बीवी को इतना गुस्सा करते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या वो बोलेगी कल को हमारे सामने? वो जब साथ मिले हैं ना उलमा के, तब
तो
गड़बड़ हुई।
तो अब तो इन तहफुजात को देखना पड़ेगा, इन तहफुजात को जाहिर है कि इनके ऊपर लेके, जबकि बहुत सारे मुखालफत भी सामने है, तो इन तहफुजात को भी देखना पड़ेगा। चलिए अब बिल्कुल आखिरी एक एक मिनट है फौजिया, पहले आप बात कर लें, फिर जोया से बात करके हम खत्म करें कि ये सफर औरत का जो है आगे की तरफ बढ़ने का, चाहे कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो, आप कुछ उम्मीद की किरण तो है ना, एक मैसेज दीजिए फौजिया बस, और उसके साथ हम खत्म करते हैं जोया के साथ बात करके। जी
मैं बिल्कुल, मैं पूरी उम्मीद हूँ और मैं समझती हूँ कि ये सफर में हम बड़े करेज के साथ हैं, हम बड़ी यूनिटी के साथ हैं, इसमें कोई वजह ही नहीं है कि हम पेन होंगे या बहुत टाइम लगेगा। मुझे नई नस्ल जो है उस पर बहुत उम्मीद है, और लोक विस्ता में जब तक मैं हूँ मैं इतना इंडिजिनस कल्चर से ताकत निकालूंगी, औरतों के लिए हमारी अपनी ट्रेडिशन में से इतनी इतने हल निकलेंगे और इतनी ताकत निकलेगी। म्यूजिक है, हमारी क्रिएटिविटी है, हमारे ऑप्शन हैं, हमारे रिश्ते हैं, इन सब को हमने सेलिब्रेट करते हुए आगे बढ़ना है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर फौजिया सईद। जोया आप भी अपना कंक्लूडिंग रिमार्क दें और फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सेगमेंट की तरफ। हमें ब्रिगेडियर इमरान मलिक ज्वाइन कर चुके हैं,
बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर। मैं ये कहना चाहूंगी कि नई सुबह हमारा इंतजार कर रही है और उस तरफ जाते हुए हमें मर्दों को साथ लेके चलना, उन्हें दीवार के साथ नहीं लगाना। औरत को मुआशी तौर पे खुद मुख्तार करने से बहुत से मसाइल जिनका मैंने अभी आज के शो में जिक्र किया वो खुद बखुद खत्म हो जाएंगे। निसाब में हमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां चाहिए और हर स्कूल के अंदर स्किल डेवलपमेंट को मस्त किया जाए एक औरत के लिए। तो मैं समझती हूँ कि मुआशी व खुद मुख्तारी की वजह से औरत बहुत मजबूत हो जाएगी।
बहुत बहुत शुक्रिया, बड़े ही दो मुमताज नाम खवातीन के लिए काम करने वाले, खवातीन के हकूक के लिए बात करने वाली आवाजें डॉक्टर फौजिया सईद और जोया तारिक हमारे साथ थे। और अब हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खवातीन का बेहद बेहद शुक्रिया अदा करते हुए, और आप प्रोग्राम जहां रंग देख रहे हैं, अभी थोड़ी देर के बाद आपसे फिर बात होती है, इस वक्फे में हमारे साथ रहिएगा।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और अब हम प्रोग्राम में अगले अपने सेगमेंट्स की बात करते हैं जो मौजूद हमने आपको बताए थे। इस वक्त हम पाकिस्तान से हमें ज्वाइन कर चुके हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इमरान मलिक। जैसा कि आप जानते हैं हमारे प्रोग्रामों का बहुत मुमताज़ नाम है, दिफाई तज्जियाकार हैं और आपके दिफाई तज्जिये छपते हैं मुख्तलिफ अखबारों में, रसालों में, तो उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। जी बगैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हसब मामूल हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। तो आज हम वहां से बात करते हैं कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता बरस दहशतगर्दी के खिलाफ 34 से ज़ायद मुल्कों का के इत्तेहाद का एक क्याम का ऐलान किया था। ये इस्लामी मुल्क थे सारे, फौजी मशकों में आज फौजी मशकें हो रही हैं वहां पर, और इन इत्तेहाद में शामिल मुल्कों की फौजें भी इसमें शामिल हैं, पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन अभी तक इस इत्तेहाद की कोई वजाहत सामने नहीं आई। इसकी नौयत क्या है, दहशतगर्दी के खिलाफ किस नौयत की कार्रवाइयां और सरगर्मियों के लिए यह इत्तेहाद तश्कील दिया गया है, कुछ बताएगा हमारे सुनने वालों को?
जी देखिए, ये सऊदी अरेबिया ने ये जो एक इत्तेहाद जमा किया था 34 कंट्रीज का
जी,
और उनको वो एक ऐसा एक कोलिशन बनाना चाह रहे थे जिसको वो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसकी नौयत जो थी कि किस तरह से ये काम करेगा, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, इसकी जो मिशन स्टेटमेंट है या इसकी जो मैंडेट है, वो तो अभी तक मेहाने वादे तौर पर सामने नहीं आई है। मगर जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो ये था कि ये जो फोर्स इकट्ठी की है, जिस फोर्स ने अभी एक एक्सरसाइज भी किया वहां पे नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया में, नॉर्थ एक्सरसाइज नॉर्थ थंडर के नाम से
जी,
इसका मकसद ये है कि एक पैगाम दिया जाए रीजन के अंदर कि सऊदी अरेबिया एक ऐसी कुव्वत के साथ उभरना चाह रहा है कि जहाँ पे वो अपना इन्फ्लुएंस जो है वो पूरे रीजन के अंदर उसको एक्सरसाइज कर सके, एक प्रेशर डेवलप करे, एक इन्फ्लुएंस डेवलप करे और उसके तहत वो अपनी पॉलिसीज को आगे लेकर जाए। अभी जो ये कोलिशन इन्होंने बनाया है इसका हदफ फिलहाल तो सीरिया लगता है और सीरिया के अंदर जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं
जी।
मगर इस कोलिशन की जो एक सबसे बड़ी आप क्या कह लें, खामी तो नहीं क्या मैं कहना चाहूँगा या कमी कह लें इसको, वो ये है कि टोटली सुन्नी कंट्रीज के ऊपर से बना हुआ है, ये एक ऑल इस्लामिक इसका कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर कोई शिया कंट्रीज से लोग शामिल नहीं है, उनके अफवाज शामिल नहीं है। तो बहुत अच्छा होता अगर सऊदी अरेबिया एक ऐसा रवैया इख्तियार करते कि जिसमें एक ऑल एम्ब्रेसिंग ऑल इस्लामिक किस्म की एक कोलिशन बनती तो जो पूरे आलम इस्लाम में दहशतगर्दी के खिलाफ काम कर सकती और अपना यू नो ये उनको दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ सकती।
अच्छा
तो मेरे ख्याल में अभी भी कुछ गया नहीं है, एक इस्लामिक फोर्स वजूद में आ चुकी है, उसके जो खदोखाल हैं वो वादे हो रहे हैं और फिल वक्त तो सऊदी अरेबिया इस कुवत को इस्तेमाल करके रीजनल जो पॉलिटिक्स हैं या रीजनल इवेंट्स जो हैं उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि अगर किसी वक्त बाद में जब कभी सऊदी अरेबिया और ईरान के मामला दुरुस्त हो जाते हैं तो उस सूरत में एक इसका कैरेक्टर जो है वो एक ऑल इस्लामिक ऑल एम्ब्रेसिंग इस्लामिक कैरेक्टर बन सकता है जो कि रीजन के लिए भी और दुनिया के लिए एक बहुत मस्बत किरदार भी अदा कर सकता है।
अच्छा बगैर साहब ये बताइएगा कि सऊदी अरब ने और पाकिस्तान के फौजियों ने गुज़श्ता साल पाकिस्तान का जो इलाका जेहलम है उसके करीब भी कुछ फौजी मशकें की थी जो इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत पर ट्रेनिंग पर मुश्तमिल थी। हम समझ सकते हैं क्योंकि आजकल सऊदी अरब में भी गुज़श्ता कुछ महीनों से काफी दहशतगर्दी के हमले हुए हैं, मुख्तलिफ सरहदों से लोग पार करके आते हैं और वहां पर या मुल्क के अंदर कुछ ऐसे हमले किए जाते हैं। अब पाकिस्तान समेत 21 मुल्क हैं जो इन मशकों में शामिल हैं, तो आपने इनकी अहमियत तो बता ही दी और इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान चूंकि वो ईरान के साथ भी उसी तरह ताबुन का खां है और अपने दूसरे बरादर मुल्कों के साथ भी, जबकि ईरान इराक इसमें शामिल नहीं है, तो क्या पाकिस्तान अपनी एक गैर जानबदाराना हैसियत कायम रख सकता है इसके अंदर?
जी बहुत ही मेरे ख्याल में बहुत ही उम्दा पॉइंट आपने उठाया है, बहुत ही अहम सवाल है ये। देखिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो मिलिट्री ट्रेनिंग है कोऑपरेशन जो है ये तो बहुत कई सदी मतलब सदियां तो नहीं कई दहाइयों से चल रही है
जी।
और ये चलती रहेगी आइंदा भी। पाकिस्तान जब सऊदी अरेबिया के अफवाज से लोग इधर आते हैं उनकी वो ट्रेनिंग करते हैं तो पाकिस्तान का बुनियादी मकसद होता है कि वो दे ट्रेन द ट्रेनर्स, वो उनके ट्रेनर्स को यहाँ पे ट्रेन करते हैं और ये ट्रेनर्स वापस अपने मुल्क में जाकर अपनी अफवाज को आगे और ट्रेनिंग देते हैं। फिर जॉइंट एक्सरसाइजेज होती हैं पाकिस्तानी आर्मी और सऊदी अरेबियन आर्मी के दरमियान या इनके जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप्स जो हैं कमांडोज जो हैं उनके दरमियान, तो उस उन एक्सरसाइजेज में जहाँ ये मिलकर काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के पहलू निकलते हैं और बहुत ज़्यादा सिखलाई होती है। तो ये तो जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बायलैटरल रिलेशन हैं उसमें तो इसमें कभी मेहनत कमी आ नहीं सकती है और ये हर रोज बरोज और स्ट्रांग होते जाएंगे। आपने बहुत उम्दा पॉइंट उठाया ईरान का
जी।
अभी आप ये देखिए कि ये अभी प्राइम मिनिस्टर और चीफ आर्मी स्टाफ जो जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, ये बहुत अहम और बहुत ही अहमियत का हामिल का दौरा होगा
जी,
क्योंकि इसी महीने के आखिर में ईरानियन प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहे हैं और अब मैं समझता हूं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ उस पोजीशन में आ रहे हैं जहां पे वो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक ब्रिज का काम कर सकते हैं और जेन्युइनली एक ब्रिज का काम कर सकते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब और आर्मी चीफ इनकी कोशिशें रंग लाती हैं और किसी भी तरह से अगर हम ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर हम दोस्ती नहीं करा सकते तो अगर हम कोई टेंशन ही कम करा दें तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और ये पहला कदम होगा उस तरफ कि हम एक ऑल इस्लामिक फोर्स बन के उभरें इस पूरे मुल्क पूरे रीजन के अंदर और फिर दुनिया के अंदर। तो आइंदा चंद हफ्ते जो आने वाले हैं उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट जो है सऊदी अरेबिया की ये बहुत अहमियत की हामिल है और उससे भी ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाएगी जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दौरा करते हैं और इन दो विजिट के दरमियान जो फिर नतीजे निकलते हैं वो इस खत्ते के लिए बेतहा अहमियत का हामिल होंगे, और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ उनके लिए बहुत अहमियत रखेंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने एक बहुत ही बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी इख्तियार की है और उसमें इसको कामयाबी होनी चाहिए।
अच्छा बगे साहब, पाकिस्तान के सूबे पंजाब के मकतूल गवर्नर सलमान तासीर के बेटे, जिनको शहबाज तासीर को गुस्सा कोई 4.5 साल पहले अगवा कर लिया गया था, उनके बारे में फौज के शुबे ताल्लुकात आमा ISPR की तरफ से जारी एक मुख्तसर बयान में बताया गया कि उनको बाजयाब कर लिया गया है। अभी जाहिर है कि बहुत ज्यादा इसके बारे में मालूम नहीं है। इसके साथ साथ एक और सवाल सामने आता है कि पाकिस्तान के सबक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली हैदर गिलानी को भी 2013 में ही अगवा किया गया था, लेकिन उन्हें अभी तक बाजयाब नहीं कराया जा सका। लेकिन ये जो पेशरफ्त हुई है, क्या आप समझते हैं कि अब कुछ सूरत हाल ऐसी हो रही है कि ऐसे जो लोग अगवा कर लिए गए थे, अहम लोग या मुमताज लोगों की तरफ के, उनको वापस करवाने की या उनकी बाजयाबी की कोई सूरत सामने आएगी?
मेरे ख्याल में तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और बहुत खुशाइन डेवलपमेंट है। शहबाज तासीर को क्वेटा के पास एक जगह है कुछलाक
जी
बलोचिस्तान,
जी जी
वहां से बाजयाब कराया गया है और ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है जिसके तहत वो वहां से बाजयाब हुए हैं।
जी
और ये उम्मीद की जा सकती है कि यूसुफ रजा
गिलानी
गिलानी साहब
साहब
के जो साहब हैं जी,
उनको
हैदर गिलानी साहब जो हैं, उनको भी इंशाल्लाह इसी तरह से बाजयाब करा लिया जाएगा। मेरे ख्याल
अच्छा
में जो सलमान तासीर साहब के कातिल के साथ जो इंसाफ हुआ है, मैं उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट होगा इन तमाम चीजों पे।
तमाम चीजों के ऊपर।
और
अच्छा,
हाँ जी
लेकिन इसके
बिल्कुल
साथ साथ एक और सवाल मैं यहाँ करती चलूँ। दहशतगर्दी की हम बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप ये फरमाइएगा कि कल गुज़श्ता दिनों कल कल की बात है कि चारसदा में शबगदर के मकाम पर अदालत में एक हमला हुआ जिसको नाकाम बना दिया गया, लेकिन फिर भी 16 लोग वहां मारे गए। लेकिन उसके जवाब में आज क्या हुआ है कि शुमाली वजीरस्तान में कार्रवाई की गई है और वहां पर दर्जनों अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया गया है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो कार्रवाइयां हैं साथ में दिफाई कार्रवाइयां साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन उस तरफ से वो उनको भी जहां मौका मिलेगा वो उसका जवाब में हमला जरूर करेंगे, तो ये सारी सूरत हाल जो है इसको किस तरह से आप देखेंगे और रैप अप करेंगे, इसका तजिया किस तरह से करेंगे आप?
मेरे ख्याल में जी ये ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब जो है ये तो बहुत ही कामयाबी के साथ अभी रवान दवा है। आप ये चीज़ नोट करें कि अब कैंपेन सीजन शुरू होने वाला है, मार्च आ गया है, पहाड़ों से बर्फें पिघल रही हैं, हट रही हैं, और जो कैंपेनिंग सीजन है उसका अभी आप समझे आगाज हो रहा है। शवाल के इलाके में पाकिस्तान आर्मी ने अपना जो आखिरी स्टेज या जो फाइनल फेज कहते हैं अपने ऑपरेशन का वो शुरू कर दिया है, और ये जो आज हमला हुआ है एयरफोर्स की तरफ से और आर्मी की तरफ से, जिसमें कहा जा रहा है कि 21 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं और वहाँ से उनके काफ़ी अड्डे भी उन्होंने और जो कमीन गाहें हैं वो भी खाली करवा ली हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। ये मेरे ख्याल में एक कोइंसिडेंस है कि शब कदर में उन्होंने जो हमला किया है उससे अगले दिन ही ये कार्रवाई हो गई, और ये एक शायद तासुर ये भी हो कि
जवाब में हुई
उसके उसके बदले में किया गया। मेरे ख्याल में ऐसी बात
ऐसी नहीं, वो एक हिकमत अमली है जो कि मतवातर और मुसलसल है जो कि चल रही है और उसी हिसाब से की जा रही है उसको। अच्छा आखिरी सवाल मेरा बरगेर साहब आपसे है कि आज भी सरताज अजीज साहब ने, जो कि वजीर आजम के खारजा अमूर के मुशीर हैं, उन्होंने ये कहा है कि अफगान अमन अमल की जानब पेशरफ मुतवक्के है, लेकिन गुज़श्ता दिनों में जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत मुतजाद खबरें भी सामने आई हैं। अशरफ गनी की तरफ से अफगानिस्तान के जो सदर हैं, तालिबान से ये कहा जाता रहा है कि वो अमन के अमल में शामिल हों क्योंकि ये सभी के मुफाद में है। तालिबान का कहना यह है कि अभी तक गैर मुल्की फौजें यहां पर है, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सारी सूरत हाल है बड़ी मुतजाद सी बनी हुई है। पहले ये ख्याल था कि शायद जल्द ये बातचीत का कुछ इम्कान होगा, लेकिन अभी फौरी तौर पर कोई इम्कान नजर नहीं आता। आप इस सारे तनाजुर में क्या तजिया करेंगे सूरत हाल का?
भाई साहब, आप ये देखिए कि जब भी निगोसिएशन होती हैं तो निगोसिएशन में जितने भी फरीक शामिल होते हैं सबकी ख्वाहिश होती है कि वो निगोशिएट करें फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ।
जी
अब हुआ यह है कि अफगानिस्तान में जितने भी फरीक थे वो सब जंगें लड़ते रहे पिछले 10-15 साल में, मगर उसमें कोई वाजे तौर पर फातह होकर सामने नहीं आया।
जी।
ना तो अमरीका और उसकी अफवाज या ISAF की अफवाज फातह हो सकी, ना ही तालिबान फातह हो सके, ना ही अफगान गवर्नमेंट फातह हो सकी। तो जब कोई वहां पे फातह नहीं है तो वो अपना जो जो अपना विल है वो दूसरी पार्टी के ऊपर इम्पोज नहीं कर सकता है। अब चूंकि एक स्टेलमेट है और इसके अंदर कोई भी कुव्वत ऐसी नहीं है कि जो अपनी बात मनवा सके, इसलिए अब वो कंडीशंस के ऊपर सारी बातचीत चल रही है कि इन कंडीशंस को लगाकर कोई एक ऐसी बर्तरी की पोजीशन इख्तियार की जाए जहां से बैठकर वो अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू को डिक्टेट कर सकें या इम्पोज कर सकें दूसरी पार्टीज के ऊपर। तो तालिबान की ये जो बात है मानने, ये जो डिमांड्स जो हैं कि जी
तो ये तो पुरानी है जी, बहुत पुरानी है, शुरू से ही उन्होंने बात ही यहाँ से की थी कि उस वक्त तक बात नहीं करेंगे जब तक गैर मुल्की फौजें नहीं जाएंगी। तो अभी वो जैसे कहते हैं कि बिल्कुल जैसे एक दायरा पूरा करके फिर मामला वहीं का वहीं है।
तो फिर वो तो फिर आप इनको डिसाइड ये करना है कि भाई क्या वो अमन चाहते हैं या फिर वो जंग चाहते हैं। और अगर वो ये समझ रहे हैं कि वो जंग जीत जाएंगे तो मेरे ख्याल में ये स्टेलमेट ऐसे ही चलता रहेगा और इसमें अफगानिस्तान और अफगानिस्तान की कौम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और ये सारा रीजन बशमोल अफगानिस्तान टोटली डिस्टेबलाइज रहेगा और इसमें कभी भी कोई तरक्की नहीं होगी और इनकी सारे रीजन की इकॉनमी इससे बर्बाद हो जाएगी। मेरे ख्याल में तालिबान को भी, अफगान हुकूमत को भी और ये जो कोऑर्डिनेटरल कोऑर्डिनेशन ग्रुप जो है, इन सबको मिलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर तमाम पार्टीज कॉम्प्रोमाइज़ करें, अपनी अपनी पोजिशन से नीचे आएँ और आके बेयर मिनिमम जो जहाँ पे इनकी एग्रीमेंट होती है उन बेयर मिनिमम पॉइंट से स्टार्ट करें। और वो ये भी हो सकता है कि हम बेयर मिनिमम पॉइंट हो सकते हैं कि हम सब अमन चाहते हैं, अगर इसी एक नुक्ते से आगाज करें तो फिर अपने ये पॉइंट्स जो हैं, अपनी जो बातचीत है उसको आहिस्ता आहिस्ता उसका दायराकार बढ़ाते हुए इसको अमन की तरफ ले जाएं और बाकायदा तौर पर इसके वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लें कि जिससे दोनों पार्टीज या तालिबान और अफगान गवर्नमेंट जो है वो दोनों राजी हो जाएं और कोई एक इस किस्म का लाए अमल आए जिससे अफगानिस्तान में अमन आ सके, उस कौम को भी अमन मिल सके। ये मुमकिन है, ये हो सकता है, मगर इसके लिए लाजमी है कि तालिबान भी अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे हटें और अफगान गवर्नमेंट जो है वो भी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करें।
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर इमरान मलिक हमारे साथ थे। ब्रिगेडियर साहब आपका बेहद शुक्रिया, आपसे मेरी फिर भी बात होगी और आज के प्रोग्राम में आपके तजिया ब्रिगेडियर इमरान मलिक का तजिया आप सुन रहे थे। मुख्तलिफ अमूर के ऊपर हमने बात की और अब हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़े हैं जो कि मशरक़ वुस्ता और बैन अल-अक़वामी अमूर के बारे में हम बात करते हैं। और हमें पाकिस्तान से हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनाथ और यहां वाशिंगटन से पॉलिटेक्ट से हमारा साथ दे रहे हैं आरिफ अंसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अमरीका के नायब सदर जो बाइडन के 5 रोजा दौरे का आगाज हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात से उन्होंने आमद से शुरू किया। उन्होंने दाश को जड़ से उखाड़ने के अज़्म का इजहार भी किया। उन्होंने ये बताया कि दाश पर कड़ी ज़र्ब लगाई गई है और उसके माली वसाइल को खत्म किया जा रहा है। तो मेरा सवाल यही है कि जो कि हम हमेशा करते आए हैं, दाश के बारे में हमने बहुत बात की है अपने इस प्रोग्राम में, तो आप ये समझते हैं डॉक्टर फारूक हसनात आपसे हम शुरू करते हैं कि पिछले गुज़श्ता दिनों में दाश के साके लिए जो कोशिशें की गई हैं वो वाकईतन मौसर साबित हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये भी साथ में जहन में रखने की बात है कि इराक में उसने अपनी कार्रवाईयों में इजाफा किया है और गुज़श्ता कुछ हफ्तों से इराक में यके बाद दीगरे खुदकुश हमले हुए हैं जिनमें दर्जनों की तादाद में लोग हलाक भी हुए हैं। तो किस तरह इस सारी सूरत हाल के सिनेरियो में किस तरह से आप तजिया करेंगे?
मैं ये कहूंगा कि हम दुनिया को ही गए हैं, दुनिया में एक ब्रॉड बेस एग्रीमेंट हो चुका है जो कि उसमें कुछ मसाइल आ गए हैं, इंडियन पार्लियामेंट उसकी हुकूमत की मंजूरी नहीं थी, लेकिन जैसे भी यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो फिर दाइश के ऊपर वो काफी प्रेशर रख सकेंगे। और हाल ही में अमरीका के जहाजों ने भी वहां पर बमबारी की, तो इसलिए कि दाइश जो है वो वहां पे आते हैं टेररिस्ट ग्रुप इन जैसे, जहां पे हुकूमत की हिट कमजोर होती है, जहां पे वैक्यूम होता है,
ठीक है,
जैसे जैसे हुकूमतें मजबूत होती जाएंगी ऐसे ही दाइश जो है वो कोने में चला जाएगा। अगर हम सीरिया की सिचुएशन ले लें, अभी तो बहुत कुछ वहाँ पे करना बाकी है, अभी तो बहुत से वहाँ पे मसाइल हैं, लेकिन जो ये ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर हुई थी 2 हफ्ते के लिए, ये मैं तो इसको एक पेशरफ्ती समझूंगा, चाहे वो कितनी ही छोटी पेशरफ्ती ना हो। और इसमें भी अगर किसी किस्म की समझौता तो मैं नहीं कहूँगा अभी हो सकता है इतनी जल्दी, लेकिन अगर कुछ थोड़ा इसकी ट्रैंक्वलिटी आ जाए और जो उस पर ये होगा कि पूरा रोल लगाया जाएगा कि दाइश को खत्म किया जाए और उनके साथ जो इस किस्म के दहशतगर्द ग्रुप है उनको खत्म किया जाए और किसी ऐसी हुकूमत की तरफ बढ़ा जाए कि जो कि ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस के साथ बने, तो उससे भी दाइश जो है वो ऑन आर हो जाएगा। हाल ही में जो इन्होंने दाइश ने अपना दायरा फैलाया, पूरी बात की इराक
के
ऊपर जो इन्होंने हमला किया और लेकिन वहाँ पे ये भी देखिए कि उसके ऊपर अमल भी बहुत सख्त हुआ, जैसे कि यूरोपियन ममालिक भी उसमें आ गए, अमरीका भी उसमें आ गया, और अपने खत्ते के ममालिक भी उन्होंने क्या सख्त जद्द अमल किया और उसको पूरा एक अजम का इजहार किया कि हम दाइश को यहाँ से बढ़ने नहीं देंगे। और जहाँ तक इराक का मामला है, वो सुसाइड बॉम्बिंग करना, एक आ जाना, वो तो ऐसी बात है जो कि आप किसी भी माशरे में कर सकते हैं। असल बात यह है कि टेरिटरी उनसे ली जाए, उन्हें जिन इलाकों पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है
वो उनसे वापस ले जाए,
खासतौर पर वो उनसे वापस लिया जाए ताकि उनको स्पेस उनकी कम से कम होती जाए
और इसी तरह वसाइल पे इन्हिसार भी कम हो जाए,
तो ये करते रहेंगे।
अच्छा, हम बात करते हैं आरिफ साहब से। आरिफ साहब ये फरमाइएगा, अभी हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर हसनात ने भी शाम का हवाला दिया, शाम में गुज़श्ता तकरीबन अब दो हफ्तों की तरफ बढ़ने वाला मामला है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, हसास है, बहुत नाजुक है, लेकिन इसके बावजूद फायर बंदी जारी है और जिसकी वजह से लड़ाई में भी काफी खातर खा कमी देखी गई है। अब जनीवा में इस हफ्ते के आखिर में गालिबन जुमे के रोज अमन मुज़ाकरात की बात की जा रही है और जो अपोजिशन की नुमाइंदा ग्रुप है वहाँ, अपोजिशन के ग्रुपों की जो नुमाइंदा हकुम वहाँ पे कोलेशन है या इत्तेहाद है, उन्होंने भी इस बात का इंदिया दिया है कि वो जनीवा में होने वाले इस बातचीत में शामिल होंगे। आप ये बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल को किस हद तक उम्मीद अफजा करार दिया जा सकता है, शाम में अमन मुजाकरात और तस्फीये के मुताबिक, तो कोई तस्फिया जो सियासी तस्फिया है उसको करने के बारे में।
बेंच सबको ये ज़रूरत तो महसूस हो रही है, मतलब आप कह सकते हैं कि सब पीस की कोशिशों के लिए और उसके फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए चाहते हैं, मेरा ख्याल में रियलाइजेशन है कि वो उस तरफ बढ़ें। चैलेंजेस जो हैं वो भी अपनी जगह मौजूद हैं और मिक्स रिपोर्ट्स आती रहती हैं हर दिन, जैसे आपने भी बताया कि कभी लगता है कि वो कुछ अपोजिशन, सीरियन अपोजिशन कभी कहती है कि हम शायद ना आए, हम सोच रहे हैं, कभी एचएनसी वाले कहते हैं कि हम सोच रहे हैं, हमने पूरा डिसाइड नहीं किया, लेकिन नॉनदलेस अमरीका और रूस के दरमियान जो एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसके तहत ये मामला आगे बढ़ा और अब जिस स्टेज में भी है, मेरा ख्याल हर दिन ही शायद वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं, लेकिन मस्तूरा साहब ने जो यूएन के मीडिएटर हैं
शाम के लिए, जी
शाम के लिए, उनके मुताबिक बात आगे बढ़ रही है, कुछ ग्रुप्स लेट पहुंचे शायद, लेकिन कुछ ना कुछ जितने भी ग्रुप्स वहां पहुंच गए हैं शायद उन्हीं के दरमियान जो प्रॉक्सिमिटी टॉक्स कहा जा रहा है, जिनको डायरेक्ट तो नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ इंटरमीडिएट्स के थ्रू कर रहे हैं, तो प्रोसेस तो आगे बढ़ रहा है, कोशिश भी बहुत है, लेकिन चैलेंजेस भी मेरा ख्याल है अपनी जगह मौजूद हैं। जैसा कि आपको पता है कि दूसरी तरफ खतरा ये है कि तमाम ग्रुप्स जो हैं वो एक नेक्स्ट फेज की भी तैयारी कर रहे हैं कि फर्ज करें अगर ये फिर ब्रेक डाउन होता है तो नेक्स्ट फेज में क्या हो सकता है, और उसमें जो है मेरा ख्याल है जो कंट्रीज हैं खासतौर पर तुर्की, सऊदी अरेबिया, उनकी अप्रीहेंशन जो हैं वो बड़ी पीक पे पहुंची हुई हैं, क्या रद्द अमल वो अपनाएंगे, और मेरा ख्याल है कि वाइस प्रेसिडेंट बाइडन का भी जो मिडिल ईस्ट का दौरा है वो इसी तसलसल में देखा जा सकता है कि वो अपने एलाइज को वहाँ रीजन में अशोर करें, क्योंकि अमरीका के ऊपर एक तोहमत सी लग रही है कि वो पूरा इन्वॉल्व नहीं हो रहा या पूरी क्लियर गारंटीज नहीं दे रहा, हालांकि रूस तो कूद चुका है मैदान में, तो वो मेरा ख्याल अशोर कर रहे हैं वहाँ पे कि नहीं ऐसी बात नहीं है, और एट द सेम टाइम मेरा ख्याल है वो वहाँ पे सेनर वॉइसेस को दवाम दे रहे हैं कि हमें कोई जल्दबाजी या कोई गलत इकदाम नहीं करना चाहिए, और जो आपने बयान का जिक्र भी किया कि आईएसआईएस के खिलाफ जो उन्होंने दुबई में तकरीर भी की है वो रीअश्योरिंग है उन एलाइज के लिए।
अच्छा, अब यही बात मैं चाहूंगी, अब डॉक्टर फारूक असनाद से थोड़ी सी इसी बारे में और बात करते हैं। अपने नायब सदर जो बाइडन की बात हुई तो एक और उनकी का बयान बताते चलें, जो कल उन्होंने मुत्तहिद अरब इमारात में ही मुख्तलिफ जगहों पर बात करते हुए एक बयान में ये भी शामिल था कि उन्होंने मुस्तरद कर दिया बिल्कुल फौजी हल जो है शाम के लिए, उनका कहना है पोलिटिकल जो सोल्यूशन है सियासी तस्फिया वही। लेकिन डॉक्टर हसनात, मेरा सवाल ये है कि शाम के अंदर बहुत मुख्तलिफ कुवतें जो हैं उनके मुख्तलिफ अलायंसेज और इत्तेहाद हैं, अमरीका के कुछ इत्तेहादी जो हैं वो बशारुल असद के बगैर इस तस्फिये की बात करते हैं, कुछ इत्तेहादी जो हैं वो बशारुल असद के साथ इस तस्फिये की बात करते हैं, तो शाम में इस सारी सूरत हाल को आप आगे बढ़ता कैसे देख रहे हैं, ये सियासी तस्फिया बशारुल असद के साथ या बशारुल असद के बगैर?
इसमें एक चीज तो ये देखनी है कि 5 साल हो गए इस लड़ाई को और बड़े खौफनाक किस्म की लड़ाई हो रही है, कोई मामूली भी नहीं। इसमें एक और फटीक सिंड्रोम भी आ जाता है, जब आप इस तरह की लंबी अरसे के लिए लड़ाई लड़ें और इतना ज्यादा नुकसान हो रहा हो तो आपके जो एहसास हैं और इवन फिजिकल कैपेसिटी है उस पर भी असर पड़ता है, और जो फरीक हैं वो अपने आप को कुछ कमजोर भी समझने लगते हैं। दूसरी बात है कि जब आप बातचीत का अमल शुरू करते हैं, ये सही बात है कि हर ग्रुप ये चाहेगा कि हम जो मैदान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां लें, उससे हमारी निगोशिएशन की पोजीशन ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन उसके साथ ये भी होता है कि शायद अगर हमने इस वक्त इस चीज से फायदा ना उठाया तो हम सब कुछ खो देंगे, और जो थोड़ा बहुत भी हमने हासिल करना है तो वो भी नहीं कर सकेंगे। यानी ये डेस्ट गेम चल रही होती है, नर्व की गेम भी चल रही होती है इसके साथ साथ। मेरा अपना ख्याल है कि रूस के आने से और वहां पे अमेरिका और रूस की एक अंडरस्टैंडिंग होने से मामला बेहतर हुए हैं, इसलिए कि रूस, हम जब पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत बड़ा कह चुके हैं कि रूस ही ऐसा मुल्क है या ईरान है जो बशर असद के अंदर ये दबाव डाल सकता है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाए। क्योंकि अगर इन दो ममालिक को आप निकाल दीजिए तो फिर जब अमरीका में असल में बदकिस्मती हुई है, जो भी अमरीका ने अपना असर को चलाते में उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही लो हो चुकी है। एक तो वो इसराइल की साथ दे दे के बिल्कुल वन साइडेड, दूसरा वो डिक्टेटर के साथ जाके, तो जिसकी वजह से रूस को मौका मिला प्लेटिन से फायदा उठाने का। लेकिन बहरहाल एंड ऑफ द डे ये हुआ कि रूस और अमरीका की अंडरस्टैंडिंग हो गई, तो इसलिए ये उम्मीद की जा सकती है। बहुत सी मुश्किल हैं, जैसे आपने भी निशान दी थी, बेशुमार ग्रुप हैं, बहुत से इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं। और एक बात मैं यहाँ कहूँगा कि हम, मुझे समझ नहीं आती कि सऊदी अरेबिया को तो क्या जरूरत है कि वो ना उनका हमसाया है शाम, ना उनके साथ उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट इस तरह क्लैश होते हैं। अगर वो छोड़ दें उनको अपने हाल पे, तो इसीलिए आप देखिए लीबिया में इसलिए इस्तेलाह हो चुकी होने के चांस ज़्यादा बेहतर है कि उसमें सऊदी अरब इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए ये भी अमरीका में बिल्कुल अभी जो दौरा किया जो बाइडन ने, उन्होंने खलीजी ममालिक को खासतौर पर सऊदी अरब को ये कहा होगा कि वो जरा थोड़ा सा परे हैं इस मामलात में, और हम और उनको तय करने में दूसरी ग्रुपों को जो कि खासतौर पर रीजनल ग्रुपते हैं या अंदर उसके शाम के अंदर जो ग्रुपते हैं उनको अपने तौर पर मामला पे तय करने दें,
करने
तो उससे ज्यादा चांसेस हो जाए।
अच्छा, अभी बात की आरिफ, अभी बात की है डॉक्टर हसनात ने ट्यूनिस के बारे, लीबिया के बारे में बात की है, अभी लीबिया के बारे में बात हुई तो ट्यूनिस की में एक बड़ी हालात कुछ तेजी से बदले हैं, और गुज़श्ता 2 दिन पहले भी वहां पर नामालूम शिद्दत पसंदों का नाम लिया जा रहा है कि उनके दरमियान और फौजियों के दरमियान लड़ाई हुई, कोई 53 अफराद के हलाक होने के बारे में खबर है, और आमतौर पर यह भी कहा जाता है जो इत्तलात के मुताबिक कि लीबिया से शिद्दत पसंद जो है वो सरहद पार करके वहां पर आते हैं, और इस तरह ट्यूनिस और लीबिया का जिसकी सूरत हाल जो है वो भी उसी तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही है, क्योंकि वहां पे भी शिद्दत पसंद काफी जोर से और भरपूर अंदाज में अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं। इस सारे सिलसिले को आप क्या कहेंगे, कहां से निकल के लोग वहां पर जाकर अब अपनी इन सारी कार्रवाइयों को मुर्तकिस कर रहे हैं, क्या इस तरह से इसको देखना चाहिए?
जी बहजत, ये एक फिनोमिनन है जो हम देख रहे हैं वाइडर, उस पर ये चल रहा है जो एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड चल रही हैं बातें काफी अरसे से, जिसके अंदर टैक्टिक्स और इवेंट्स और स्ट्रेटजीज में ओवर टाइम तब्दीली आती गई है। और अब ये जिस तरह के वाकयात तुनिजिया में हुए हैं, वो खास तौर पे जिसमें आईएसआईएस का लिंक भी है और क्रॉस बॉर्डर वाला एलिमेंट भी है, लीबिया में बढ़ती हुई इंस्टेबिलिटी का एलिमेंट भी है, जिस तरह के हम देखते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान उधर भी इसी किस्म के क्रॉस बॉर्डर और हमले देखने में आते रहते हैं, तो ये एक नई किस्म की टैक्टिक्स उभरती हुई टैक्टिक्स है कि कुछ लोग मिलके और वो हमला करते हैं मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे। और लेकिन इसमें हम कहेंगे कि ये एक नेक्स्ट फेज है, ऑब्वियसली जो हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीमिज्म से रिलेटेड जो टैक्टिक्स इस्तेमाल हो रही है, कि जहाँ पे स्टेट्स पूरी कोशिश कर रही हैं कंट्रोल अपनी टेरिटरीज पे संभालने का, लेकिन ये है कि जो एक्सट्रीमिस्ट रिलेटेड ग्रुप्स हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं जमा हो के जहाँ भी उन्हें कोई सेफ हेवन मिल जाता है वो बॉर्डर्स क्रॉस करके या मुल्क के अंदर से ही सिंपथीज लेके हमले करते हैं इस तरह के। तो ये मुख्तलिफ जगहों में देखने में आता रहता है, आप देख रहे हैं कि अफ्रीका में सोमालिया
जी,
होता रहता है, तो ये जो आप कहेंगे कि जो पॉकेट्स ऑफ इंस्टेबिलिटीज हैं या एक क्योस सा है जहाँ पे स्टेट्स अपना पूरा कंट्रोल नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि जाहिरी बात है ये फिनोमिनन फैला है, अक्रॉस बॉर्डर्स गया है और अब इसकी एक और नई फेज निकल के आ रही है जिसको हम मेरा ख्याल में मिडल ईस्ट में खास तौर पे देख रहे हैं, जिस तरह की सीरिया की सिचुएशन उभर रही है। तो मेरा ख्याल हम इसको इस तसलसल में देखें तो शायद ज्यादा समझ आती है, बजाय इसके कि इंडिविजुअली तो एक है, ठीक है वो एक खास इलाके में हुआ, तुनिजिया में क्यों हुआ और उसके अवामिल क्या थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉर्डर ब्रॉडर पैटर्न में यही है कि ग्रोइंग इंस्टेबिलिटी, क्रॉस बॉर्डर वाला एलिमेंट है, एक जगह से तकरीब कार निकल के दूसरी जगह जाके छुपते हैं, जहाँ पे उन पर प्रेशर पड़ता है वहाँ से वो भाग जाते हैं। और जाहिरी बात है कि ये मुल्क और टेरिटरीज एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं तो एज सच एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई इतना मुश्किल नहीं होता।
अच्छा, अब बात करते हैं आखिर में ईरान के बारे में। ईरान ने आज ये ताज़ा तरीन इत्तला आई है कि उसने अपने मुल्क में कई मकामात पर बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजुर्बा किया है, लॉन्च किए हैं उनको, और इसके साथ साथ और कहा उसकी रीज़न जो जस्टिफिकेशन या जवाब है वो ये है कि ये दिखाने का ये इजहार है कि वो खतरों से निमटने की सलाहियत पूरे तरह से रखता है और पूरी तरह से तैयार भी है उसके लिए। तो डॉक्टर हसनात, आप ये फरमाइएगा, गुज़श्ता दिनों भी ऐसी बात हुई अमरीका की तरफ से नई पाबंदियां भी लगाई गई, तो अब ईरान की तरफ से ये जो नए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने की बात सामने आई है, इससे अमरीका और आलमी सतह पर जो मुख्तलिफ ताकतें हैं उनका रद्द अमल क्या होगा?
मेरे ख्याल में भी बैलिस्टिक मिसाइल तो हर मुल्क को हक है कि वो करे, और न्यूक्लियर ना हो, न्यूक्लियर उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, बाकी यहाँ पे टेक्नोलॉजी को हासिल करने का तरीका है या टेक्नोलॉजी हासिल अपने दिफा के लिए, वो तो हर मुल्क को उसका हक है। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें प्रोटेस्ट तो होगा, अमेरिका ने भी प्रोटेस्ट किया है, उन्होंने अपने रेजोल्यूशन ऐड की है, लेकिन आप ये भी देखिए ना, कहीं यूरोपियंस की तरफ से और दूसरे ममालिक की तरफ से हमें कोई खदशात इस चीज से नजर नहीं आए। अगर ईरान के हमसाया ममालिक को देख लीजिए, पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, तुर्की हमसाया मुल्क है, सेंट्रल एशियन है, तो किसी ने भी कोई इस खतरे का इजहार नहीं किया कि ईरान के इस तजर्बे से तो हमारे दफा को खतरा है, सबसे करीब तो यही ममालिक हैं। अच्छा। तो मेरा अपना ख्याल है कि ईरान अब ज्यादा इस तरफ जाएगा, क्योंकि ये इतने के बाद पाबंदियां कि अपने मुल्क को डेवलप करे और इकोनॉमिक करिए, जो उन्होंने बार बार कहा है, इन इलेक्शन में भी कहा है, अभी इंतखाबात में भी जो सदर रूहानी के जमात है या हामी है
जी, तेहरान में
जीत हुई है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ ही जा रहे हैं, तो उसमें अगर कुछ मिसाइल वो जबा करेंगे, पाकिस्तान भी रोज करता है, हर चौथे दिन पाकिस्तान भी।
अच्छा, कोई ज्यादा रद्द अमल सामने नहीं आएगा? अच्छा, आरिफ साहब आखिरी आप इसके बारे में कमेंट करिए ताकि फिर हम अपने प्रोग्राम को खत्म करें, आखिरी एक मिनट।
जी मेरा ख्याल ईरान भी टेस्ट करता रहता है, मतलब एक तो मिसल का टेस्ट है, लेकिन वो वाटर्स को भी टेस्ट कर रहा है या हालात को भी टेस्ट कर रहा है, जिस तरह करता रहता है, जिस तरह अमेरिका की तरफ से बयान सख्त आते हैं बाज दफा, या एक अमेरिकन इलेक्शंस भी यहाँ चल रहे हैं उसमें मुख्तलिफ कैंडिडेट्स मुख्तलिफ किस्म के बयान भी देते रहते हैं, जिसकी वजह से ईरान में काफी तश्वीश रहती है। और जाहिर बात है कि ईरान में भी इलेक्शन हुए हैं अभी, जहाँ पे कुछ कुवतों मॉडरेट्स को स्ट्रेंथ मिली है, तो वो भी ये नहीं दिखाना चाहता कि वो बिल्कुल ही सब कुछ दाव पे लगा बैठा है या सब कुछ गंवा बैठा है एग्रीमेंट के थ्रू, तो मेरा ख्याल है वो भी अपना स्ट्रेंथ दिखाने के लिए इस तरह के टेस्ट करता है कि हम अभी भी अपने दिफा को मद्देनजर रख रहे हैं। और जाहिर बात है कि फिर यहाँ पे क्रिटिसिज्म फिर आता है ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कि किस किस्म का एग्रीमेंट है, लेकिन जाहिर बात है कि मिसल वाला जो था वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट में मेरा ख्याल शामिल नहीं था, और ये रूम बीच में है कि जिसमें ईरान जो है अपनी इस किस्म के टेस्ट करता है उसी रूम के अंदर रह के।
आरिफ अंसार साहब यहाँ पॉलिटेक से वाशिंगटन से हमारे साथ थे, सीनियर रिसर्चर हैं, अपने इन सारे मशरक़ वुस्ता के उमूर के बारे में और साउथ एशिया के बारे में खास तौर पर उनके गहरी नज़र है, और डॉक्टर फारूक हसनात हमारे प्रोग्रामों का एक और मुमताज नाम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है और यहाँ पर जंग स्कॉलर हैं मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के भी। आप लोगों से मेरी बात हुई, इसके अलावा हमने मुख्तलिफ मौजूद पर बात की, और आज जैसा कि खवातीन का आलमी दिन था उस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया, और अपने सुनने वालों से एक बार फिर हम ہم یہ اس معذرت کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں کہ آج ہمارے کچھ تکنیکی خرابیوں کی وجہ سے بہت ساری ایسی ویڈیوز جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے تھے, آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے, وہ نہیں کر سکے. تو چلیے کوئی بات نہیں, کل کا پروگرام سے پھر ہمارا صورتحال واضح ہو کر سامنے آئے گی اور آپ کو ہم مختلف ویڈیوز بھی دکھا سکیں گے. تو اب بہجت کو آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی. ہمارے پروگراموں کو سنتے رہیے, ہم سے رابطے میں رہیے. بہجت کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی